जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन गिरवर धारी, 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 यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजाकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजागाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण गुरु और गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सागद्वैतं सागदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिम् यत्कृपाहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणम् परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम अष्टम स्कंद में पंचम अध्याय देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना इस अध्याय में 31वां श्लोक देखेंगे। इमे वयम् यत् प्रियेव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरन्तरावीः गतिम् न सूक्ष्मा ऋषयश्च विद्महे कुतो असुराद्या इतर प्रधानाः इमे वयम् यत् प्रियेव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरन्तरावीः गतिम् न सूक्ष्मा ऋषयश्च विद्महे कुतो असुराद्या इतर प्रधाना इमे वयम् यत् प्रियेव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरन्तरावीः गतिम् न सूक्ष्मा ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतर प्रधाना। माताजी शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की इमे ये वयम हम देवता यत जिसको प्रिय या अत्यंत प्रिय लगने वाले एव निश्चय ही तन्वा भौतिक शरीर सत्वेन सत्वगुण से सृष्टा उत्पन्न बहि अंतः आवि ही. यद्यपि बाहर और भीतर से परिपूर्णतया अवगत यद्यपि बाहर तथा भीतर से पूर्णतया अवगत गतिम लक्ष्य न नहीं सूक्ष्माम अत्यंत सूक्ष्म ऋषयः संत पुरुष चा भी विद्महे समझते हैं. कुतः कैसे असुर आद्यः असुर तथा नास्तिक इतर अन्य नगण्य लोग प्रधाना यद्यपि वे अपने समाज के नेता हैं क्योंकि हमारे शरीर सत्गुण से निर्मित है. कृपया पीछे पीछे दोहराएं. क्योंकि हमारे शरीर सत्गुण से निर्मित है इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सत्गुण में स्थित हैं. सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं. अतएव यदि हम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ना समझ पाए तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुण में स्थित हैं. भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं. हम उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं. तात्पर्य नास्तिक तथा असुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते यद्यपि श्री भगवान हर एक के भीतर स्थित हैं. उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्ट हुआ है. मृत्युः सर्वहरश्यामः हरश्याम कि मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं. नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं अतः वे श्री भगवान के आधिपत्य की चिंता नहीं करते. फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे मृत्यु के रूप में उनको धर दबोचते हैं. मृत्यु के समय उनका तथा कथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने के दार्शनिक तर्क वितर्क विफल हो जाते हैं. उदाहरणार्थ हिरण्यकश्यपु नास्तिक वर्ग के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधि था. वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था और इस प्रकार वह अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने वाला था. प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकश्यपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था किंतु जब भगवान नरसिंह देव उसे मारने के लिए प्रकट हुए तो उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए. भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला और उसके सारे बल प्रभाव तथा गर्व को चूर चूर कर दिया. किंतु नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सृजित प्रत्येक वस्तु किस तरह विनष्ट कर दी जाती है. यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित हैं, किंतु रजो तथा तमोगुण की प्रधानता के कारण श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नहीं समझ पाते. यहाँ तक कि देवता तथा भक्त भी श्री भगवान के गुणों एवं उनकी स्तुति से पूर्णतः अवगत नहीं है। यद्यपि वे दिव्य पद पर या सत्व पद पर स्थित होते हैं, आसीन होते हैं, फिर भला असुर तथा नास्तिक लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। अतएव इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने श्री भगवान को सादर नमस्कार किया है। हरे कृष्ण। बड़ा ही मार्मिक श्लोक है। यहां पर उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवों के चरणारविंद में दास कोटि कोटि वंदन आशीर्वादार्थम कृपालेशार्थम प्रणाम करता है। आप सभी वैष्णवजन और वैष्णवियां दास के ऊपर कृपा करें, जिससे श्रीमद् भागवतम का सही विमर्श प्रस्तुत हो सके। वृंदावन में तो कीट पतंग अंत्यज और चंडाल सूकर इनकी भी महिमा गाई गई है। अगर प्रबोधानंद सरस्वती पाद के ग्रंथ को हम देखें, वृंदावन महिमा अमृत, तो जो संप्रदाय भुक्त होकर दीक्षित हैं, वैष्णव नाम जप कर रहे हैं और भगवत प्राप्ति के लिए लालायित हैं, उनकी तो फिर महिमा का कहना ही क्या है। यहां पर जो प्रसंग चल रहा है अष्टम स्कंद में, अष्टम स्कंद जैसा हम सभी जानते हैं भगवान की बाहु कहा गया है। सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद भगवान की बाहु है, नवम स्कंद भगवान का कंठ है और दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद है। तो बाहुओं के द्वारा खूब सारा कार्य होता है, तो इसी प्रकार से इस स्कंद में भी भगवान बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे देखा था पहले कि गजेंद्र को भगवान ने खूब आतुर होकर बचाया, तो चूंकि जो अष्टम स्कंद है वो मनमंत्र से संबंधित है, यानी कि मनमंत्रों की जितने 14 मनमंत्र होते हैं उन सारे 14 मनमंत्र का वर्णन किया जाएगा। जब सुखदेव गोस्वामी 14 मनमंत्रों का वर्णन कर रहे थे कि इस मनमंत्र में, हर एक मनमंत्र में 6 विशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान उसमें विशेष रूप से अवतरित होते हैं, कोई अलग नए इंद्र आते हैं, देवता बनते हैं, सप्तऋषि आते हैं, मनुपुत्र होते हैं, तो इस प्रकार से और देवता इत्यादि होते हैं, तो ये 6 जन विशेष विशेष से परिवर्तित होते रहते हैं, तो वो बताते जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन जब कभी भी यत किंचित इंगित कर देते थे कि इस मनमंत्र में भगवान ने ये विशेष लीला की, तो वहीं परीक्षित महाराज मानो उनके चरण पकड़ लेते थे और बोलते थे कि प्रभु क्या लीला हुई थी, सुनाइए सुनाइए। जिस प्रकार से सांसारिक जो जन होते हैं, जब सांसारिक वार्ताओं की थोड़ी सी एक चिंगारी आती है तो उसको वो क्या कर देते हैं, और हवा देते हैं। अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, पूछते हैं ना पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ, इसके यहाँ क्या हुआ, अमुक व्यक्ति का क्या हुआ। तो ऐसे ही जो वैष्णव जन होते हैं, जो भागवत रस लंपट होते हैं, मैंने ऐसा ही शब्द प्रयोग हुआ है, जिस तरीके से कामी जन जो होता है वो कामनी के प्रति लंपट होता है, उसको ये लज्जा हया नहीं रहती कि समाज में लोग उसकी क्या कहेंगे, कैसे उसकी कुत्सा होगी, इसके बारे में विचार नहीं करता। इसे एक श्लोक भी आता है, काम आतुराणाम भयम न लज्जा, कि जो काम आतुर होता है, विषय आतुर होता है, उसको भय और लज्जा नहीं होती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रेम में आतुर हो जाता है, यानी श्रीमद् भागवतम के रस में निमग्न हो जाता है या भगवान के हरिनाम संकीर्तन में निमग्न हो जाता है, उसको भी भय लज्जा नहीं रहती। आप देखिए हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो अकेले ही टॉमसकन पार्क में बैठ गए थे और वहां संकीर्तन प्रारंभ कर दिया था, तो उनको ना कोई भय था ना कोई लज्जा थी कि कोई क्या कहेगा, है ना। कई बार भक्त लोग होते हैं संकोच करते हैं संकीर्तन करने में, कह रहे लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, यद्यपि उनके कल्याण की चिंता करनी चाहिए। तो वही यहां पे बात बताई जा रही है अष्टम स्कंद में कि भगवान के विशेष पराक्रमों का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो जब भी कभी सुखदेव गोस्वामी कोई विशेष लीला की ओर इंगित करते हैं तो परीक्षित महाराज उसको और अधिक उत्सुकता से सुनने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले हुआ था, पहले तामस मन्वंतर में केवल सुखदेव गोस्वामी ने एक वाक्य कहा था कि इसमें भगवान अन्य अवतार लिया, हरि ने अवतार लिया था और गजेंद्र का मोक्ष किया था, यानी गजेंद्र को मुक्त किया था, केवल इतनी ही बात कही थी। लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको विस्तार करने के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु आप बताइए कि कैसे कैसे इसका भगवान ने कैसे अवतरण लिया और ये कैसे गजेंद्र होकर कि तमोगुणी योनि में भी भगवान की भक्ति कर सका। तो जब विशेष प्रार्थना की जाती है तब गुरुजन या वैष्णव जन और थोड़ा कृपा करते हैं। तो यह श्रोता की गंभीरता के ऊपर वक्ता कभी कभी और ज्यादा रस प्रभाव करते हैं। यानी सबसे ज्यादा गंभीरता वक्ता से ज्यादा गंभीरता श्रोता की होनी चाहिए, यह यहां प्रकट होता है। इसी प्रकार से आगे जब और भी पांचवें मन्वंतर रेवत मन्वंतर की कथा आई कि जिसमें भगवान बैकुंठ का अवतार हुआ, फिर जैसे ही छठे मन्वंतर चाक्षुष मन्वंतर की कथा प्रारंभ की और उसमें उन्होंने केवल इतनी बात की थी कि भगवान अजित यहां पे अवतरित हुए और उन्होंने कूर्म रूप से और अनेक अनेक रूपों से, कूर्म रूप भी भगवान ने धारण किया था, अजित रूप भी धारण किया था भगवान ने, और मन्वंतर जो समुद्र मंथन का विशेष कार्य कराया, इसमें तीन चार अवतार हुए भगवान के। अजित अवतार हुआ भगवान ने जो ऊपर से शक्ति दे रहे थे, फिर आगे जाके देखेंगे कि भगवान ने कूर्म अवतार मंदराचल को धारण करने के लिए कूर्म अवतार भी धारण किया भगवान ने, फिर इसके बाद भगवान ने धन्वंतरी अवतार भी धारण किया, फिर इसके बाद मोहिनी अवतार भी धारण किया। मतलब एक ही लीला में भगवान के चार अवतार हुए, तो यानी विशेष अवतार विशेष लीला है ये कोई। तो इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ने गंभीरता पूर्वक इस प्रश्न को पूछा कि हे प्रभु आप इस लीला को और विस्तार से बताइए कि भगवान ने किस प्रयोजन से ये लीला की, क्या प्रयोजन था कि ये भगवान समुद्र मंथन का कार्य कराए, क्या ऐसा हुआ था कि देवताओं को च्युति हो गई, यानी देवताओं का जो ऐश्वर्य है वो नष्ट हो गया, ऐसा क्या हुआ था। तो कारण जैसा बताया गया है विगत दिनों से हम देख रहे हैं कि इंद्र मद से युक्त हो गया था, है ना, ऐसा होता है। जैसा कि अगर आप कुंती स्तुति देखें तो कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु चार चीजें होती हैं जो व्यक्ति के मद को एंद माना वृद्धि करती हैं, क्या क्या, बोले जन ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी एंद माना मदह पुमान, कि पुमान मदह एंद माना, कि पुमान यानी पुरुष के, पुरुष यानी कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति विशेष के मद को बढ़ाने वाली होती हैं। क्या वस्तु बढ़ाती हैं, जन्म, जन्म यानी किसी का बहुत विशेष वंश में जन्म हुआ, लोग कहते हैं ना कि हम इस वंश में जन्मे हैं, हम भार्गवी हैं, हम वाल्मीकि हैं, ऐसा लोग बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से अपने वंश को बताते हैं, तो उसका भी एक अहंकार होता है कि लोग कहते हैं ना कि हमारे मामा जी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, भले दूर के रिश्ते में हो लेकिन बोल देते कि मामा जी ही थे। तो इस प्रकार से अपने वंश को अलंकृत करने का या विशिष्टता बताने का लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जन्म, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या होता है, धन। जब भी किसी के पास धन की अधिकता होती है उसके अंदर मद आ जाता है कि मैं कुछ हूं, वो अपने आप को नियंत्रक समझने लगता है। तो जो श्री है यानी जो ऐश्वर्य है वह क्या है, मद का कारण होता है। सबसे ज्यादा मद का कारण वास्तव में ये लक्ष्मी ही होती है, यानी कि जो धन का मद है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे आप दशम स्कंद में देखेंगे तो जब नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा आती है तो नारद मुनि भी वहां पे यही बात बताते हैं कि बोले जैसा धन का मद होता है वैसा और किसी वस्तु का मद नहीं होता है, क्योंकि बाकी सब धीरे धीरे क्षीण होते रहते हैं। जैसे श्री का मद है, श्री यानी सौंदर्य मद, वो कुछ समय के बाद क्षीण हो जाता है, व्यक्ति हर समय तो सुंदर नहीं रहेगा, माने युवावस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में ही सुंदर रहता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो उसकी सुंदरता चली जाती है, भले ही वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। लेकिन जो धन का मद है वो विद्यमान रहता है, मृत्यु पर्यंत विद्यमान रहता है, इसलिए जो धन का मद है वो सबसे ज्यादा भयंकर माना गया है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हुए उन्होंने सबसे पहले ये धन को त्यागा। कहते हैं कि हमारे आचार्यगण धन का स्पर्श भी नहीं किया करते थे, मतलब एक चिमटी रखा करते थे अपने साथ में, अगर कोई दान दे गया भगवान के निमित्त तो धन को हाथ से स्पर्श नहीं करते थे, चिमटी से पकड़ते थे फिर उसको दान पेटी में डालते थे। जीव गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि जब दामोदर जी की सेवा किया करते थे, क्योंकि जब विग्रह स्थापना हो जाती है तो दान वगैरह ग्रहण करना भी पड़ता है भगवान के निमित्त, लेकिन वो क्या करते थे कि उस दिन के लिए ही रखते थे, अगले दिन के लिए फिर यमुना जी में डाल देते थे, जितना भी धन आया कुछ भी आया बोले अगले दिन भगवान फिर भेजेंगे, संचय नहीं करना। जो भी है तो बता रहे हैं कि जो श्री है, श्री अर्थात जो ऐश्वर्य है या धन है, ये सबसे ज्यादा मद का कारण होता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद और जितने भी हमारे षड गोस्वामी गण हुए या फिर जो भी भजन करने के लिए आए वो सब कुछ त्याग करके ही आए, उन्होंने धन अपने पास बिल्कुल नहीं रखा। यद्यपि ये कहना बड़ा सरल है लेकिन अपने जीवन में इसको अपनाना लागू करना बड़ा ही कठिन कार्य है ना। व्यासासन से बोलना या किसी को बोल देना कि भाई आप धन मत रखिए तो ये बड़ी सरल बात है, लेकिन खुद ना रखे और फिर व्यक्ति ऐसा बोले तो बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो सिद्धांत की बात है वो यही है, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में निष्किंचन होकर भजन करना चाहता है तो यही पद्धति है, ये शास्त्र में बताया गया है। तो यहाँ पे इंद्र को मद हुआ, जैसा कि बताया गया था, इसमें ही बताया गया था कि एक बार दुर्वासा मुनि भगवान बैकुंठनाथ के लोक से आ रहे थे। स्मरण रहना चाहिए, जैसे इस अध्याय के 5वें श्लोक में बड़ी गंभीर बात कही गई है, जैसे प्राय लोगों को लगता है कि बैकुंठ मतलब सीधे भगवान का जो परब्यूम बैकुंठ है वहां की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो बैकुंठ है ये कौन सा बैकुंठ है, रमा बैकुंठ है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान बैकुंठनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु कि आप यहाँ बैकुंठ में बैठे हुए हैं और वहां देखो पृथ्वी लोक पे और ये त्रिभुवन में किसी को आपके बारे में पता ही नहीं है, कोई आपके बारे में जानते नहीं है, जब आप तक आप अपनी माधुर्य को, अपनी भक्त वत्सलता को या अपने सौंदर्य को वहां प्रकाशित नहीं करेंगे तो लोग आपके प्रति कैसे भला आकर्षित होंगे, तो आपको थोड़े कृपा करते हुए इस त्रिजगत में, इस त्रिलोकी में अपना विस्तार करिए जिससे लोग आपकी कृपा को प्राप्त कर सकें। तो भगवान ने उन रमा देवी के, ये पूरा प्रकरण उसमें आता है, पद्म पुराण में आता है और अन्य पुराणों में भी आता है, तो बोल रहे हैं कि बैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रम्या प्रार्थमानेना, ये तो श्रीमद् भागवतम के ही वचन है, 5वां श्लोक है इसी अध्याय का। तो रम्या प्रार्थमानेना देव्या तत्प्रिय काम्यः, तो उन देवी रमा के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने क्या किया, बैकुंठ कल्पितः, क्लिप संपद्यमान धातु, यानी भगवान ने बैकुंठ का निर्माण किया, यानी इस त्रिलोकी के भीतर ही एक नया बैकुंठ निर्माण किया जिसको रमा बैकुंठ कहा जाता है। ये रमा बैकुंठ वही है जहां पे कई बार अनधिकारी लोग भी प्रवेश कर जाते हैं, जैसे भगवान शिव एक बार भागे थे, है ना, एक असुर पीछे भागा था, क्या नाम था उसका, भस्मासुर, तो भस्मासुर के भागने पर शिव जी बैकुंठ लोक तक पहुंचे थे। तो उस समय अब शिव जी तो भले बैकुंठ लोक में जा सकते हैं, अधिकारी व्यक्ति हैं, लेकिन वो भस्मासुर थोड़ी जा सकता है ना, लेकिन वो भी चला गया। तो वो जो कभी कभी जो अनधिकारी लोग चले जाते हैं वो रमा बैकुंठी है, जैसे कई बार जैसे चतुष कुमार का वर्णन आता है तृतीय स्कंद में कि वो भी बैकुंठ गए थे और जय विजय ने उनको रोक दिया, यद्यपि उस बैकुंठ और इस बैकुंठ के वैभव में कोई भेद नहीं है, जैसे वहां के परिकर है, जैसे वहां का वैभव है, भगवान का सारा तामझाम है, वैसे ही यहां का यहां सब कुछ है, लेकिन वो इस लोक में है, बस इतना अंतर है ना। जैसे लोग कई बार उदाहरण देते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी भारत में भी है, तो एम्बेसी का जो एरिया होता है उसमें अमेरिका के ही नियम लगते हैं, या भारत की, या अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी होगी तो वहां पे भारत के ही नियम लगते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी कृपा करके अपने लोक का विस्तार यहाँ पे कर देते हैं, तो वही यहाँ पे रमा बैकुंठ की बात हो रही है। तो जो दुर्वासा मुनि है वही रमा बैकुंठ से होकर आए थे और भगवान की जो कृपा प्रसाद रूपी माला थी भगवान ने उनको पहनाई थी, तो उनको पहन के आए थे। अब दुर्वासा जी ने देखा कि ये है इंद्र, इंद्र भगवान के विभूति माने जाते हैं, है ना। मतलब कहा जाता है कि भगवान के एक अंश, जैसे सक्ताविश अवतार होता है ना, तो ऐसे ही कुछ मान सकते हैं कि भगवान का एक विभूति रूप से इंद्र है। तो दुर्वासा जी ने सोचा कि इंद्र को भगवान की कृपा मिलनी चाहिए, तो भगवान, तो दुर्वासा जी ने क्या किया, वह भगवान की माला इंद्र को पहनाई। अब लेकिन इंद्र ने विचार किया, अब ये जो विचार था ये कर्म कांड का विचार है, ये भक्ति का विचार नहीं है। जैसे भक्ति में तो क्या होता है कि भगवान की प्रसादी माला या भक्तों की प्रसादी माला, गुरु महाराज की प्रसादी माला जो है, या किसी विशेष भक्त की प्रसादी माला है, वो तो और अधिक पुण्यशाली हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन कर्मकांड में ऐसा कहा जाता है कि ये चीजें अगर स्पर्श हो जाए किसी से तो ये हीनता का कारण होती है। जैसे बोलते हैं पर सजा पर वस्त्रम चा, पर सैया पर स्त्री चा, क्या क्या, पर सजा यानी दूसरे की माला, ये कर्मकांड विषय ज्ञान है, स्मरण रहे। यानी कर्मकांड में अगर किसी दूसरे की माला आप पहनते हैं तो आपका श्रीहीन हो जाते हैं आप, ऐसा मानते हैं। लेकिन भक्ति में वृद्धि हो जाती है, उल्टी बात होती है, क्योंकि भक्ति में तो कृपा मिलती है। अब कर्मकांड में क्या मिलता है भगवान जाने, है ना। उसमें तो क्या हो गया, लोग अपना अपना कर्म करते हैं, अपना अपना अपुण्य को, पुण्य को अर्जित करते हैं, अपूर्व को अर्जित करते हैं। तो पर सृजा पर वस्त्रम चा, दूसरे के वस्त्र नहीं लेना चाहिए। भक्ति में उल्टा होता है कि जो वैष्णव ने वस्त्र दिए हैं उसका बड़ा सम्मान से लोग रखते हैं। अभी भी राधा रमण में श्रीमन महाप्रभु का जो वस्त्र है अभी भी वहां कभी कभी दिखाया जाता है किसी किसी विशेष पुण्यतिथि पे। तो लेकिन भक्ति में वही बात उल्टी हो जाएगी, लेकिन कर्मकांड में वही बात उल्टी होती है। तो पर सजा पर वस्त्रम चा पर सैया, दूसरे के सैया कभी प्रयोग नहीं लेनी चाहिए। और पर स्त्री चा, दूसरे की स्त्री। पर अग्नो, दूसरे की जलाई हुई अग्नि में भी लोग रंधन नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता। मतलब अपनी अग्नि खुद जलाएंगे, यानी दूसरे का चूल्हा भी प्रयोग नहीं किया जाता था पहले। मतलब कर्म कांड विषय बात बताई जा रही है। तो ये क्या करता है, पचतम पापम, अगर कोई दूसरे की अग्नि में भी कोई रंधन कार्य करता है, रसोई करता है, तो पचतम पापम, पाप को रंधन करता है। इंद्रियस्य अपि श्रियं हरेत, अगर ये कार्य इंद्र भी करेगा, यानी इंद्र भी दूसरे की माला लेगा, वस्त्र लेगा, सैया लेगा, या किसी की स्त्री लेगा, या किसी के अग्नि में व्यवहार करेगा, रंधन कार्य करेगा, तो इंद्रियस्य अपि श्रियं हरेत, ऐसी बात कही गई है। तो ये बात को इंद्र ने स्मरण करके उस माला का क्या कर दिया था, तिरस्कार कर दिया था। लेकिन ये बात भगवत प्रसादी या भगवत निर्माल्य के लिए लागू नहीं होती है, ये भक्तों को स्मरण रहना चाहिए। तो इसलिए भगवत प्रसादी का अपराध होने के कारण इंद्र क्या हो गए, श्रीहीन हो गए। यद्यपि दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्वासा मुनि श्राप नहीं भी देते तो भी वो श्रीहीन हो जाते। यह अपराध है ना कि भगवान की जो वस्तु है और उसका आप निरादर कर दें तो आप श्रीहीन हो ही जाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान का जो महाप्रसाद है, माला है या वस्त्र है या कोई भी वस्तु है भगवान की प्रसादी, उसका बड़ा सत्कार करना, जैसा हम भगवान को दंडवत करते हैं वैसे ही दंडवत करना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए, और श्रीहीन होने के बाद क्या होता है, वापिस जैसे ही अपने लोक में पहुंचते हैं तो इधर से असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ये लोग ब्रह्मा जी के पास में जानते हैं, ब्रह्मा जी विचार करते हैं। अब यहां पे देखिए, अब कोई कह सकता है कि ये ब्रह्मा जी हर बार देवताओं का ही क्यों पक्ष लेते हैं, ब्रह्मा जी तो एक प्रकार से भगवत अवतार ही है, गुणावतार है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुणावतार है, तो उनको तो जो बात है यानी सभी के लिए समान रहना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा जी यहां पे पक्षपात क्यों कर रहे हैं, देवताओं का पक्ष क्यों ले रहे हैं। तो चूंकि जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, मूल में ही लिखा है कि ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि अभी सतोगुण की वृद्धि का समय है, यानी हर एक काल का अलग अलग समय होता है, कभी रजोगुण की वृद्धि का समय होता है, कभी सतोगुण वृद्धि का समय होता है, और कभी तमोगुण वृद्धि का भी समय होता है। जब तमोगुण वृद्धि का समय होगा तो आपस में मारकाट मचेगी, प्रलय जैसा हाल हो जाएगा। जब रजोगुण की वृद्धि का समय होगा तब क्या होगा, सब जगह खूब सृष्टि कार्य होंगे, बड़े बड़े मकान बनेंगे, इंडस्ट्री बनेंगी, और भी जो भी कार्य होंगे। और जब सतोगुणी कार्य होगा तो पालन कार्य होगा, देवालय खोले जाएंगे, भगवान के मंदिर खोले जाएंगे, ऐसा कार्य होगा। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अभी तो इन देवताओं के पराजय का समय नहीं है, क्योंकि अभी तो सतोगुण की वृद्धि का समय है। तो सतोगुण की वृद्धि का समय होने के कारण अभी इन लोगों की पराजय ठीक नहीं है, यानी इन लोगों को ही शासन करना चाहिए, असुरों को अभी शासन करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, इन देवताओं को अपने साथ में लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, है ना। और भगवान से जैसे ही प्रार्थना करने लगे तो भगवान के, अब जैसे प्रार्थना भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर से करता है, जैसे ब्रह्मा जी की ज्यादातर जो प्रार्थनाएं होंगी या फिर अलग अलग, जैसे कुंती जी की प्रार्थना है तो वो अलग स्तर की प्रार्थना है, क्योंकि कुंती है वो वात्सल्य भाव भी है और ऐश्वर्य भाव, दोनों भाव उनमें मिश्रित है, देवकी जैसी है वो। जैसे देवकी जी में, अगर देवकी जी की प्रार्थना को देखा जाए दसम स्कंद में, तो दोनों प्रकार की भावना वहां मिलती है, वात्सल्य भाव भी भगवान के प्रति देखने को मिलता है और उसमें ऐश्वर्य भाव भी समाहित है। लेकिन अब यशोदा माई तो कहीं प्रार्थना करती नहीं है भगवान से, क्योंकि उनमें तो पूर्ण वात्सल्य है। लेकिन जैसे गोपियों की प्रार्थना देखी जाए, गोपी गीत प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, उसमें किंचित मात्र भी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं है, है ना। उसमें पूर्ण रूपेण केवल माधुर्य का ही वर्णन है। तो जो व्यक्ति जैसा स्तर का होता है वो वैसी प्रार्थना करता है। तो हमें जैसे अगर देखा जाए, जैसे नारायण कवच आप देखें श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में आप लोगों ने देखा होगा कि नारायण कवच, जो नारायण कवच विद्या है उसको अगर देखें तो उसमें कई जगह इस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु आप हमारे शत्रु का वध कर दें, उनकी स्त्रियां कभी गर्भ धारण ना करें, इस प्रकार की विशेष बातें उसमें लिखी कि उनका गर्भ स्राव हो जाए। लेकिन भक्त लोग कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वो तो हर एक जीव के प्रति साम्य रहते हैं। तो लेकिन चूंकि वो किसने प्रार्थना करवा रहे हैं, इंद्र आदि या फिर देवतागण हैं जो इंद्रासन चाहते हैं या देवताओं का आसन चाहते हैं, देवलोक चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो प्रायः भले ही उससे व्यक्ति की सुरक्षा होती है, लेकिन फिर भी प्रायः भक्त लोग नारायण कवच इत्यादि का ज्यादा पाठ करते हुए दिखते नहीं है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म रूप से किसी की अहित करने की इच्छा है। तो हमें उस व्यक्ति की ही प्रार्थना का अनुसरण करना चाहिए जो हमारे भाव के अनुकूल है। जैसे कोई माधुर्य भाव का भक्त है तो उसको फिर गोपियों की प्रार्थना ही ज्यादा अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। अब कोई व्यक्ति वात्सल्य भाव का है तो वात्सल्य भाव के लिए जो भाव पुष्ट करने वाली प्रार्थनाएं हैं या लीलाएं हैं उनका ही उससे विशेष चिंतन करना चाहिए। अब कोई प्राय दास्य भाव में है, जैसे हम लोगों को प्रारंभिक भक्ति में जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि अभी आप अपने आप को दास्य भाव में ही माने, बाद में जब आप भक्ति करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, तो आपको खुद अपना जो स्वरूप होगा वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसके लिए किसी को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जो स्तर है वो आपको खुद प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो परमात्मा रूप से हृदय में विराजमान है ही। तो इसलिए ज्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो वही यहां पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की है इसमें क्या है, भगवान का जो तटस्थ लक्षण है कि भगवान इस सृष्टि को कैसे क्रियान्वित करते हैं, भगवान का इस ब्रह्मांड में कैसा ऐश्वर्य है, जीव कैसे बंधे हुए हैं, भगवान की माया शक्ति क्या है, इसका वर्णन अधिक कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड कैसे सृजन होता है और सृजन करते समय क्या उनको अनुभूति होती है या फिर वो कैसे कार्य में लगते हैं ब्रह्मा जी, तो उस भाव को अनुसरण करते हुए ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी हम देखते हैं कि जो प्रार्थना होती है बड़ी क्लिष्ट हो जाती है, जैसे द्वितीय स्कंद में आप देखें ब्रह्मा जी ने वहां पे भी प्रार्थना की है, भगवान की स्तुति की है। तो द्वितीय स्कंद में, फिर तृतीय स्कंद में भी भगवान ने प्रार्थना की है ब्रह्मा जी ने। तो जहां पे भी ब्रह्मा जी कुछ बोलेंगे तो वहां पे थोड़ी सी हमारी बुद्धि चकरा जाती है, ऐसा देखने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह सृष्टि करता है, वो अपने तरीके से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना। लेकिन हर एक स्तुति भगवान की वंदनीय है, और हर एक, जैसे कुछ भक्त हैं वो भगवान की स्तुतियों में उनको विशेष आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि वह भक्त भगवान को कैसे पूजता है या कैसे देखता है वो पता चलता है उसमें। इसलिए प्रायः जितने भक्त लोग होते हैं वो भगवान के प्रति की गई स्तुतियों का विशेष पठन पाठन करते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपनी स्तुति कुछ लिख नहीं सकते, हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान की स्तुतियां हैं उनको गा भी सकें या समझ भी सकें, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कर सकते हैं कि जो किसी विशेष वैष्णव ने भगवान की प्रार्थना की है, स्तुति की है, मंडन किया है, उसका हम क्या कर सकते हैं, भगवान के सामने पठन पाठन कर सकते हैं। जैसे प्रायः वृंदावन में जो भक्त हैं वो राधा कृपा कटाक्ष गाया करते हैं, उसमें राधा रानी की महिमा का वर्णन है। कई भक्त कृष्ण कटाक्ष भी गाते हैं, है ना, कृष्ण कृपा कटाक्ष। तो ये जो चूंकि विशेष भक्तों ने गाए हुए हैं तो उनका हम अनुसरण करते हुए हम भी गा लेते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी यहां पे अपने भाव को प्रेरित करते हुए यहां पे कह रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें भाव क्या है, तो कह रहे हैं कि हे प्रभु। तो 30वां श्लोक और 31वां श्लोक दोनों लगभग मिला जुला है, दोनों एक साथ लेकर उसमें पूरा भाव निकल के आएगा। तो जैसे कल कहा था कि ना यस्य कश्चित् कस्यार्थी तत्त मायाम, तो ना यस्य कश्चित् ना यस्य या कश्च अति तर्तति मायाम, कि हे प्रभु आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता। यया जनो मोहयति वेदनार्थम, जिसके कारण जीव क्या होता है, मोहित होता है। प्रायः भक्त लोग और अन्य लोग भी माया के संबंध में बड़े विमोहित रहते हैं, यानी माया है क्या। कई बार भक्त लोग पूछते भी हैं कि भाई माया है क्या, मतलब ऐसे दिखती तो है नहीं, किसको माना माया, माया है क्या, मतलब कि कोई पदार्थ है, कि भगवान की कोई शक्ति है, क्या है, मतलब क्या स्वरूप क्या माने उसका। तो अगर भगवान की जो माया है उसके दो सर्वरूप, जैसे माया शब्द के जो अर्थ भी बताए गए हैं वो क्या है, माया दंभे कृपायाम च, संस्कृत में एक तो दंभ, दंभ मतलब जो ठग ले, जो नहीं है और वैसा दिखे उसको माया कहा जाएगा, और कृपायाम च, तो भगवान की माया यानी भगवान की कृपा को भी माया कहते हैं कई बार। अब माया है क्या, तो जैसे आचार्य ने तृतीय स्कंद की टीका में, यानी तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवतम की टीका में श्रीधर स्वामी पाद ने माया की व्याख्या लिखी, वहां पे क्या बताते हैं, माया यानी दो वस्तु होती है, एक होती है आवरणिका और दूसरी होती है आक्षेपिका। आवरणिका क्या है, अब जैसे हमारा शरीर है ना, हम हैं क्या, सब लोग जानते हैं कि हम शुद्ध बुद्ध चित्त आत्मा है, लेकिन हुआ क्या, माया के प्रभाव से हम इस देह रूपी आवरण में आ गए। तो ये पहला कार्य हुआ माया का, क्या, आवरणी का, कि जो जीव का स्वरूप है उसको आवरण में डाल देना, कैद में कर देना। तो ये हुआ पहला कार्य माया का, आवरणी का, ठीक है। अब इसमें भी कोई विशेष हानि नहीं थी, जैसे अगर हम इस शरीर रूपी जाल में कैद हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर हमें ये स्मृति है कि हम भगवान के जीवित स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, अगर ये स्मृति है तो भी कोई हानि नहीं है। लेकिन माया फिर दूसरा कार्य करती है, उससे सारा कार्य प्रारंभ होता है। आवरण में आ गए वो भी इतना भयानक वस्तु नहीं थी, लेकिन दूसरा कार्य क्या कर देती है माया, आक्षेपिका, आक्षेपित कर देती है। हम में क्या भाव आ जाता है कि हम ये शरीर हैं, तो ये सबसे बंधन का कारण हो जाता है। तो इसी आक्षेप को हटाने के लिए सारा ये भक्ति शास्त्र है, सारा भक्ति तत्व है, गुरु हैं, वैष्णव हैं। जैसे भगवान की एक बात है, भगवान की क्या बात है कि भगवान की जो तीन शक्ति है कि जड़, जो जगत है, जीव है और ये माया है, ठीक है ना, तीन वस्तु है ऐसा समझ सकते हैं। तो जगत और माया यद्यपि एक ही चीज है लेकिन फिर भी इसको अलग करके एक बार मानते हैं कि जो भगवान क्या करते, अब भगवान कहे कि ए माया तू मेरे जीव को सता क्यों रही है, क्यों इसको बंधन में डाल रही है, तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे। तो भगवान किसी के भी जो वैशिष्ट गुण है उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब चाहे तो भगवान ऐसा कर दें कि भगवान जीव को ही विभू बना दे तो माया उसको आवृत ही नहीं करेगी, तो ऐसा भी नहीं करेंगे भगवान, जीव अणु ही रहेगा। माया आक्षेपक और आवरण करने वाली ही रहेगी, लेकिन भगवान क्या करेंगे, एक तीसरी व्यवस्था दे देते हैं, क्या कर देते हैं कि गुरु शिष्य प्रणाली, गुरु शिष्य परंपरा को प्रभावित कर देते हैं कि जो बद्ध जीव हैं उनके ऊपर भगवान कृपा करने के लिए उनके हृदय में ही परमात्मा से बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई जीव भगवान की ओर किंचित मात्रा में भी उन्मुख होता है या किसी वैष्णव की कृपा का पात्र होता है, दो चीजों में व्यक्ति भक्ति करता है, या तो वो भगवान के प्रति उन्मुख हुआ ऐसा होना संभव नहीं रहता, क्योंकि प्रहलाद तो जीव होते हैं अनादि काल से, क्या है, बहिर्मुखी है वो। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे कोई कृष्ण कृपा सिंधु होते हैं कि वह हमको भक्ति की ओर प्रवाहित करते हैं। तो यानी जैसे अगर आप माधुर कादंबनी पढ़े तो उसमें जो पहला श्लोक है उसमें यही बात कही गई कि जीव भक्ति कैसे करता है, ये बताओ जीव को भक्ति कैसे प्राप्त हुई। कोई कहे भगवान से हुई, तो भगवान में फिर वैषम्य आ जाएगा कि अरे भगवान किसी को भक्ति दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो ऐसी बात नहीं है। तो कोई कहेगा कि इसके पुण्य भाग, कोई पिछला भाग्य होगा, कुछ पुण्य कार्य किया होगा, इससे उसको भक्ति दी, भक्ति मिली। तो पुण्य में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को भक्ति प्रदान कर सके। तो फिर भक्ति कहां से मिली, तो वहां पे लिखा है कि किसी वैष्णव की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो वो तो कोई वैष्णव आए होंगे भगवत गीता वितरण करने के लिए या हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, उनके माध्यम से जो हरे कृष्ण महामंत्र हमारे कारण में प्रवेश किया तो उससे हमारे हृदय में भक्ति जागृत हुई। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास कुछ पूर्व जन्म में सुकृति हो गई, वो सुकृति भी क्या है, वो भक्ति का ही अंश है। तो यहां पे बात यह हुई कि माया क्या हुई, माया आवरणिका आक्षेपिका हुई। तो भगवान माया को हटाते नहीं है, इस जगत में माया रहेगी। तो जो भी वस्तु हमारे ज्ञान को तिरोहित कर दे और हमें किसी दूसरे भाव में ले जाए जो हम है नहीं, वह कार्य माया का होता है। यानी जगत में हमारा भाव आ जाए कि जगत में हम अपने आप को मानने लगे कि हम ये शरीर है, ये हमारे लोग हैं, ये मेरी पुत्र है, ये पत्री है, ये संसार हमारा है, ये मकान हमारा है। तो ये जो भाव है हमारे हृदय में आ जाता है, ये किसका कार्य है, माया का है। लेकिन जैसे ही हम गुरुपाद आश्रय ग्रहण करते हैं तो माया का प्रभाव फिर भगवान क्या करते हैं, खींच लेते हैं। यानी माया क्योंकि भगवान से डरती है, जैसे द्वितीय स्कंद में देखेंगे तो माया के लिए बोला कि बिलज्जमानम स्थितः, कि माया भगवान से दूर खड़ी रहती है, भगवान से एकदम लज्जित रहती है। तो जब भी हम भगवान का चरण आश्रय ले लेते हैं तो माया डर जाती है। एक हमारे आश्रम में एक बड़ा अच्छा पहले एक कोट लगा हुआ था, भक्त लोग बता रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, प्रभुपाद जी का एक कोटेशन था कि उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं, प्रभुपाद जी रो रहे थे, मतलब उसमें रुंदन कर रहे थे। तो किसी भक्त ने पूछा कि हे प्रभुपाद आप क्यों रो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने भक्त से कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि हमारे जो भक्त लोग हैं हमारे समुदाय के, वो माया से डरते नहीं है, मैं तो माया से डरता हूं। तो कहने का मतलब है, डरना का मतलब है अलर्ट रहना हमेशा माया, क्योंकि इतनी प्रभावशाली है कि कभी भी किसी भी समय हमें जीव को दबोच सकती है। उसका तरीका यही है, जैसे कि भगवत गीता में कहा है, भगवान बता रहे हैं माया के स्वरूप को कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते, कि भगवान के चरणाश्रय ग्रहण करने से ही माया से हम पार पा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वही यहां पे बता रहा। तो यहां पे इसके पहले वाले में माया के स्वरूप को बताया, अब यहां पे जो श्लोक है इसमें यहां पे ये बता रहे हैं कि इमे वयम यत प्रियैव तन्मा, जो भगवान के ये जो देवगण है ना, ये सतोगुण से बने हुए हैं, मतलब इनमें रजोगुण तमोगुण बहुत कम है। मतलब हमारा शरीर तो प्रायः अगर देखा जाए तो सतोगुण की मात्रा बहुत कम है, रजोगुण तमोगुण अधिक है, इसलिए हमें सतोगुण में वृद्धि करने का प्रयास करने को कहा जाता है। लेकिन देखिए देवगण सतोगुण की इतनी अधिकता है, मतलब कहा जाता है अगर आप पंचम स्कंद पढ़ेंगे तो वहां पे जो देवताओं का वर्णन आता है उसमें कहा है कि जो उनकी स्त्रियां हैं उनके शरीर से सुगंध निकलती रहती है। मतलब जिसका शरीर जितना सतोगुण की वृद्धि हो जाएगा उतना सुगंध और अच्छी वस्तुएं शरीर में वृद्धि हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर में तो ऐसा संभव है नहीं, यहां पे तो विकृति ही विकृति है। तो सोचिए उनको भी भगवान का पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं होता। यद्यपि जैसे अगर केवल कोई मूल श्लोक को देखे तो इसमें यह पता चलेगा कि ये लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। चक्रवर्तीपाद इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई एक बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा पहलवान था और वो गया परिक्रमा करने के लिए। किसकी परिक्रमा करने के लिए, सुमेरु की। सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है, आप लोगों ने पंचम स्कंद में पढ़ा होगा। तो अब परिक्रमा करने गया और उसने एक चौथाई ही परिक्रमा कर पाई। अब किसी ने पूछा कि तुमने सुमेरु को देखा क्या, तो वो क्या बोलेगा, मैंने नहीं देखा। यद्यपि उसने देखा है लेकिन उसने पूरा नहीं देखा है, है ना। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं या देवगण भी होते हैं, देवता लोग भी होते हैं, ये भी क्या कहते हैं कि हमने भगवान को कभी नहीं हम जान पाए। यद्यपि वो जान लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बहुत किंचित मात्रा में, क्योंकि भगवान की जो विभूति है या भगवान का जो ऐश्वर्य है वो प्रतिक्षण वर्धमानम, हर समय वर्धित होता रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को या भगवान की महिमा को पूर्ण रूप से कोई भी नहीं जान सकता। तो वही यहां पे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जानते। इसका तात्पर्य यह है, जैसे प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में है ये इंगित कर दिया, आचार्य के अगर टीका ना हो तो कई बार हम सही भाव नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पे जैसे पंक्ति में बोल दिया है कि कहां गया, कि यहां तक कि देवता तथा भक्त भी श्री भगवान के गुणों एवं उनकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं है। इसका मतलब है किंचित मात्रा में जानते हैं, भक्त लोग तो जानते ही हैं, ऐसा थोड़ी कि भक्त लोग भगवान की महिमा को नहीं जानते, अवश्य ही जानते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं जानते हैं, ये कहने की बात है। तो भगवान की महिमा को पूर्ण तक तो हम जान भी नहीं सकते, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारा मन का सामर्थ्य है, उतना हम जान सकेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम अगर अपनी शक्ति से भगवान की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कि वयम इमे वयम यत प्रिय एव तन्या, कि भगवान का जो प्रिय सत्व गुण है, जैसे भगवान है या भगवान का लोक है, वो किससे बना हुआ है, शुद्ध सत्व गुण से बना हुआ है। वो भी सत्व गुण ही है लेकिन वो कैसा है, पूर्ण शुद्ध है, वहां पे रजोगुण और तमोगुण की किंचित मात्र भी खटाई नहीं है। लेकिन इस त्रिलोकी में भले ही ब्रह्मा जी तक का, ब्रह्मा पर्यंत तक का क्यों शरीर ना हो, उसमें किंचित मात्र में रजोगुण तमोगुण आ ही जाता है। इसलिए भक्त लोग प्रायः ये चाहते हैं कि इस त्रिलोकी का शरीर त्याग करके ही भगवान के बैकुंठ में जाके या भगवान के गोलोक में जाकर के हम उनकी सेवा करें, जिससे हमें शुद्ध सत्वमय शरीर प्राप्त हो, ये उनकी इच्छा होती है। तो वही यहां पे बोल रहे हैं कि सत्वेन सृष्टा बहिरंतरावि, भगवान का स्वरूप कैसा होता है, इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे कि कुंती महारानी कहती है कि अंतर बहर अवस्थितम, वही भाव यहां पे उल्टा कर दिया, बहिर अंतर आवे, कि भगवान कैसे हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। अंदर कैसे हैं, तो आचार्यों ने कहा बहिर मतलब भगवान काल रूप से बाहर रहते हैं। अगर भगवान को बाहर देखना है तो भगवान का बाहर का स्वरूप कौन सा है, काल। जितने भी असुर गण हैं उनको भगवान काल रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं उनको भगवान परमात्म रूप से नियंत्रण करते हैं, काल रूप से नियंत्रण नहीं करते। तो इसलिए यहां पे भगवान के स्वरूप को बता रहे हैं कि क्या कैसे हैं भगवान, बोले बहिर अंतर आभी गतिम न सूक्ष्म ऋषयश्च विद्महे, भगवान की जो सूक्ष्म गति है, सूक्ष्म गति अर्थात विश्वव्यापनिम सच्चिदानंद आकृतिम न विद्महे, कि भगवान कैसे सच्चिदानंद विग्रह से इस विश्व का भी निर्माण कर देते हैं और बैकुंठ लोक का भी निर्माण करते हैं, उसको हम नहीं जानते। तो गतिम न सूक्ष्म ऋषयश्च विद्महे ना विद्महे, हम लोग नहीं जानते। जब हम ही नहीं जान रहे हैं जो सतोगुण में है, नहीं जानते मतलब पूर्ण रूप से नहीं जानते। कुतो असुराद्य इतर प्रधाना, फिर जो असुर गण है या निम्न कोटि के जो लोग हैं वो कैसे भगवान के तत्व को जान सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के तत्व को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। जो भी यत किंचित जानते हैं वो कितना जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे उदाहरण से हमने समझा कि कोई व्यक्ति सुमेरु की परिक्रमा करने गया, उसने कुछ परिक्रमा भी की, 10% 20% 50% तक कर दी, लेकिन पूरी नहीं कर पाया, तो वो क्या बोलेगा कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने किंचित मात्रा में की। तो वही बात यहां पे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते लेकिन हम थोड़ा बहुत जानते हैं, ये कहने का भाव है। तो यहां पे अगर इस पूरे स्तुति का अगर सार देखा जाए तो यहां पे भाव क्या है, भाव यह है कि भगवान को जानने के लिए इन ग्रंथों का हमें आश्रय लेना चाहिए। यद्यपि हम पूर्णता नहीं जान पाएंगे लेकिन फिर भी अगर हमारी प्रीति, जैसे परीक्षित महाराज की तरह अगर हम श्रुत संपन्न हो जाए या फिर सुनने की हमारी इच्छा हो जाए, तो फिर हमारे अंदर भगवान का जितना अधिक भाव है या माधुर्य है वो हमारे अंदर उतनी मात्रा में प्रकट होता जाएगा। यानी जितनी अधिक लौल्यता होगी, जितना अधिक समर्पण होगा, उतना भगवान हमारे हृदय में भाव प्रकट करते हैं। जैसे प्राण हम अपने जीवन में देख भी सकते हैं कि प्रारंभिक दशा में जीव भगवत गीता पढ़ता है या श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, वही श्लोक होता है, लेकिन उससे इतना रस वर्षण नहीं होता, इतना रस की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है, अधिक जप करता है, श्रीमद् भागवतम का अधिक श्रवण करता है, भक्तों की सेवा करता है, उसके अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, फिर बाद में निष्ठा रुचि आसक्ति भाव धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाता है, तो फिर उसको उन्हीं वस्तुओं में क्या हो जाती है, वही चीज थी, वही श्लोक था, वही हरे कृष्ण महामंत्र था, लेकिन वो ऐसा लगने लगता है कि इसका मैं त्याग ही नहीं करूं। वस्तु वही रहती है, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को बदल थोड़ी जाता है, वो तो प्रारंभिक दशा में वही था और भाव दशा में भी वही रहता है और प्रेम दशा में भी वही वस्तु रहती है, लेकिन वही वस्तु का आस्वादन क्या हो जाता है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग रहता है। जैसे अगर आप माधुर कादंबनी पढ़ेंगे तो उसमें हर एक स्तर की अलग अलग विवेचना दी है कि जब भाव स्तर में आता है तो व्यक्ति भगवान के अलावा और कुछ देखते ही नहीं है, जो कुछ भी देखेगा केवल भगवान से संबंधित ही देखेगा, कोई भी रंग देखे, चाहे श्वेत श्याम या ये केसरिया वस्त्र देखे, कुछ भी देखे, उसको भगवान की ही स्मृति आएगी और कुछ नहीं आएगी। तो धीरे धीरे ये पता चलता है। तो कहने का तो आज के हम अगर वक्तव्य में देखें तो यही सार बात है कि भगवान की जो माया है उसको पार करने के लिए भगवान का चरण आश्रय एकदम डट के कर लेना चाहिए, जिससे भगवान की जो माया है हमारे ऊपर हावी ना हो। यही एक रास्ता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। हाँ 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 प्रभु जी पूछ। हाँ बोले बोले सुन लेंगे। हाँ सही कह रहे हैं। यानी जीव को मनुष्य में ये सामर्थ्य होती है। जी सही कह रहे हैं। यही है मतलब मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि व्यक्ति किसी भी स्तर तक जा सकता है, चाहे तो नीचे चला जाए चाहे तो ऊपर चला जाए, और सत्वगुण की वृद्धि करेगा तो सत्वगुण में आएगा और जब भक्ति करेगा तो शुद्ध सत्व में भी स्थित हो जाएगा। सही कह रहे हैं। हाँ हरे कृष्ण। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी। श्रुत मतलब जैसे कोई ज्ञान संपन्न होता है उसका भी अहंकार होता है कि मैं ज्ञानी हूं। श्री भी मतलब सुंदरता, मतलब सुंदरता, ज्ञान, जन्म और धन। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।